अनिवार्य। ओपनिंग नरेशन। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है। आज हम मिस्र के बहुत ही मशहूर लेखक नजीब महफूज, उनके सबसे चर्चित काम काहिरा ट्रायलॉजी पर बात करने वाले हैं।
हाँ बिल्कुल, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये कोई एक किताब नहीं है।
सही कहा, ये तीन उपन्यासों की एक पूरी श्रृंखला है, पैलेस वॉक, पैलेस ऑफ डिजायर और शुगर स्ट्रीट। जबरदस्त काम है।
बिल्कुल, नजीब महफूज जिन्हें 1988 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए,
और वो पहले अरबी लेखक थे जिन्हें ये सम्मान मिला।
हाँ बिल्कुल, उन्हें अरबी साहित्य में मतलब आधुनिक उपन्यास का पितामह माना जाता है।
और ये ट्रायलॉजी जो काहिरा में बसे अलजवाद परिवार की कहानी कहती है, तीन पीढ़ियों की कहानी, 1917 से लेके 1944 तक का दौर।
इसे अक्सर उनकी सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि, उनका मैग्नम ओपस माना जाता है।
तो आज हम इसी परिवार की कहानी में उतरेंगे, उनके उतार चढ़ाव, उनके जो निजी संघर्ष हैं, सपने हैं, उनको देखेंगे।
और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि महफूज ने कैसे एक परिवार के बहाने उस वक्त के बदलते मिस्र, उसकी राजनीति, परंपरा और आधुनिकता का जो टकराव था,
और इंसान के वजूद से जुड़े गहरे सवाल, उन सब को छुआ है।
बिल्कुल, तो तैयार है इस सफर के लिए?
बिल्कुल तैयार, चलिए शुरू करते हैं।
तो कहानी शुरू होती है पुराने काहिरा के गमालिया मोहल्ले से, अलजवाद परिवार का घर।
हाँ, और आपने कहा कि ये घर सिर्फ घर नहीं है, ये एक किला भी है और कैदखाना भी।
हाँ बिल्कुल, खास तौर पर घर की औरतों के लिए तो शायद कैदखाना ही ज्यादा सही शब्द है। और इस घर के मालिक हैं अल सैयद अहमद अब्द अल जवाद।
क्या किरदार है वो, महफूज ने कमाल ही कर दिया है। घर के अंदर तो वो मतलब एकदम सख्त मिजाज,
रोबदार, अनुशासन पसंद, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। घर में मजहब और रिवायतों का पूरा जोर है।
हाँ, और फिर जैसे ही वो घर की दहलीज पार करते हैं,
बिल्कुल अलग इंसान, दोस्तों की महफिलों में जिंदा दिल, रंगीन मिजाज, वहाँ गाना बजाना, शराब, हंसी मजाक, औरतों से ताल्लुकात, सब कुछ है।
ये जो दोहरापन है, ये कॉन्ट्रास्ट, क्या लगता है आपको, ये सिर्फ उनका अपना विरोधाभास है या महफूज समाज पर भी टिप्पणी कर रहे हैं?
मुझे लगता है दोनों बातें हैं। एक तरफ तो ये उस वक्त के पितृसत्तात्मक समाज का आईना है, जहां मर्दों के लिए अलग नियम थे, औरतों के लिए बिल्कुल अलग।
घर की इज्जत का सारा बोझ होते उठाएं
और मर्द बाहर अपनी मर्जी से जिए। दूसरी तरफ ये अल सैयद के अपने अंदर का द्वंद्व भी है। एक तरफ वो परंपरा और इज्जत को बनाए रखना चाहते हैं
और दूसरी तरफ जिंदगी का लुत्फ भी उठाना चाहते हैं।
हाँ, और उनकी पत्नी आमिना, वो इस पितृसत्ता की दूसरी, कह सकते हैं, मूक तस्वीर है।
पतिव्रता, धैर्य, त्याग, उनकी दुनिया बस घर और बच्चे। सालों साल घर से बाहर कदम नहीं रखा उन्होंने,
सोचिए जरा। और इसी माहौल में उनके पांच बच्चे पल रहे हैं। सबसे बड़े यासिन, जो पहली पत्नी से है, वो कुछ कुछ पिता की राह पर है,
खासकर वो ऐशो आराम और रिश्तों के मामले में।
हाँ, लेकिन उनमें पिता वाला रोब या वो अनुशासन नहीं है। फिर है फहमी, जो आदर्शवादी है, राष्ट्रवादी है, देश के लिए कुछ करना चाहता है।
और फिर कमाल, सबसे छोटा बेटा, जो शायद इस पूरी कहानी का एक तरह से कहें तो दिल है, एक विचारक, एक संवेदनशील रूह।
बिल्कुल, उसकी आंखों से ही हम काफी हद तक इस बदलती दुनिया को देखते और समझते हैं।
और फिर दो बेटियां हैं,
खदीजा जो तेज तर्रार है, थोड़ी प्रैक्टिकल है,
और आयशा जो खूबसूरत है, नाजुक है, थोड़ी सपनों में खोई रहने वाली।
ये परिवार सच में एक छोटी सी दुनिया जैसा लगता है। हर तरह के रंग, हर तरह के रिश्ते, प्यार भी, जलन भी,
होड़ भी, और इन सब के ऊपर मंडराता हुआ पिता का खौफ, उनका दबदबा।
पहली किताब पैलेस वॉक, जो 1917 से 1919 का वक्त दिखाती है, वो इसी मॉल को बहुत खूबसूरती से पकड़ती है।
हाँ, और वो मशराबिया का जिक्र, वो लकड़ी की जालीदार खिड़कियां, औरतें बस वहीं से बाहर की दुनिया देखती हैं। कितना सटीक प्रतीक है ये उनकी बंधी हुई जिंदगी का। बाहर देख तो सकती हैं, पर दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती।
बिल्कुल, पैलेस वॉक उस पुरानी जमी हुई दुनिया का दस्तावेज है, लेकिन उसी दुनिया में बदलाव की आहट भी है।
हाँ, मिस्र में अंग्रेजों के खिलाफ वो राष्ट्रवाद की लहर, 1919 की क्रांति।
बिल्कुल, और फहमी जो अब कॉलेज में है, वो इस आंदोलन से जुड़ जाता है।
और यहीं पर परिवार के अंदर पहली सीधी टकराहट होती है। पिता का हुक्म है, इन सबसे दूर रहो,
और बेटे का आदर्शवाद उसे सड़कों पर खींच लाता है। ये क्लासिक जेनरेशन क्लैश भी है।
और ये टकराहट एक त्रासनी में बदल जाती है।
हाँ, फहमी एक प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज सैनिकों की गोली से मारा जाता है।
ये घटना पूरे परिवार को हिलाकर रख देती है। ये सिर्फ एक बेटे की मौत नहीं,
नहीं, ये उस सुरक्षा के भ्रम का टूटना है जो अल सैयद ने अपने परिवार के गिर्द बना रखा था। उनकी सत्ता को पहली सीधी और बहुत दर्दनाक चुनौती।
इसी दौरान वो आमिना वाली घटना भी होती है ना, छोटी सी लेकिन बहुत अहम। फहमी की शहादत और आमिना का ये छोटा सा विद्रोह, ये दोनों जैसे संकेत हैं कि पुरानी दुनिया अब दरक रही है।
हाँ, और इसी मोड़ पर पहली किताब खत्म होती है। फिर हम आते हैं दूसरी किताब पैलेस ऑफ डिजायर पर। साल है 1924 से 1927।
परिवार अब नए घर में है, बच्चे बड़े हो गए हैं और अल सैयद अहमद का वो लोहे जैसा कंट्रोल, वो भी कुछ ढीला पड़ा है।
हाँ, इसे हम बिखराव और नई तलाश का दौर कह सकते हैं।
बिखराव सबसे ज्यादा शायद यासीन की जिंदगी में दिखता है।
बिल्कुल, शादी, तलाक, फिर शादी, उसकी जिंदगी जैसे भोग विलास और नाकामी का एक गोल चक्कर बन जाती है।
वो पिता की इच्छाओं का वारिस तो बना, पर लगाम के बिना।
सही कहा, बेटियां खदीजा और आयशा, उनकी भी शादियां होती हैं। खदीजा की शादी एक तरह का समझौता है, प्रैक्टिकल।
पर आयशा की कहानी वो तो बहुत दुखद है। उसका प्यार, उसकी शादी, दोनों का अंत बहुत दुखद होता है।
हाँ, वो दिखाता है कि उस वक्त औरतों के लिए खुशी की कोई गारंटी नहीं थी, ना परंपरा में, ना तथाकथित आधुनिक रिश्तों में।
लेकिन पैलेस ऑफ डिजायर का जो केंद्र है
वो कमाल है।
हाँ, कमाल।
अब वो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में है और उसकी जिंदगी में आती है आयदा शद्दाद,
अमीर पश्चिमी रंग में रंगी लड़की।
और कमाल को उससे मतलब बेपनाह एक तरफा मोहब्बत हो जाती है।
ये मोहब्बत सिर्फ दिल टूटने का दर्द नहीं देती उसे,
नहीं, ये उसे पहली बार वर्गों के बीच की जो खाई है ना, उसका तीखा एहसास कराती है। अलजवाद परिवार मिडिल क्लास है, शद्दाद परिवार एलीट वेस्टर्नाइज्ड।
और आयदा के परिवार के जरिए ही उसका परिचय पश्चिमी साहित्य, दर्शन, विज्ञान, इन सबसे होता है।
हाँ, एक पूरी नई दुनिया उसके सामने खुल जाती है। एक तरफ तो ये इंटेलेक्चुअल एक्साइटमेंट है, नई सोच, और दूसरी तरफ उसके अपने पुराने इस्लामी यकीन।
नतीजा, एक गहरा बौद्धिक और रूहानी संकट।
बिल्कुल, वो प्यार में भी नाकामयाब होता है और खुदा पर उसकी आस्था भी डगमगा जाती है। अकेलापन, जिंदगी के मायने की तलाश, उसे कोई जवाब नहीं मिलता।
महफूज ने कमाल के इस अंदरूनी संघर्ष को, इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को बहुत गहराई से दिखाया है।
ये सिर्फ कमाल का संकट नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी का संकट है जो मिस्र में परंपरा और पश्चिम के बीच एक तरह से पिस रही थी।
पुराने यकीन टूट रहे थे, नए रास्ते साफ नहीं थे।
बिल्कुल, और कमाल की ये तलाश उसे तीसरी किताब शुगर स्ट्रीट तक ले जाती है। अब हम 1935 से 1944 के दौर में हैं।
एक और पीढ़ी आ चुकी है मैदान में, खदीजा और आयशा के बच्चे।
हाँ, और अल सैयद अहमद अब बूढ़े हो चले हैं, कमजोर, उनका वो पुराना रौब अब बस यादों में है।
हाँ, मेरा अब भी परिवार की धुरी हैं, लेकिन दुनिया इतनी बदल गई है कि वो उसे समझ नहीं पाती।
अब स्टेज पर है तीसरी पीढ़ी और उनके संघर्ष, वो मिस्र के भविष्य की दिशा तय करते नजर आते हैं।
खास तौर पर खदीजा के दो बेटे अब्दुल मुनीम और अहमद।
बिल्कुल, ये दोनों भाई दो बिल्कुल विपरीत विचारधाराओं के प्रतीक बन जाते हैं। अब्दुल मुनीम मुस्लिम ब्रदरहुड का कट्टर समर्थक है,
जो उस वक्त मिस्र में तेजी से उभर रहा एक धार्मिक राजनीतिक आंदोलन था, इस्लामी कानून वाला समाज चाहता था।
हाँ, और दूसरी तरफ उसका भाई अहमद, वो जोशीला समाजवादी है, नास्तिक है, सामाजिक क्रांति में यकीन रखता है।
और उनके बीच की जो बहसें हैं घर की महफिलों में, वो दिखाती हैं कि देश का जो सियासी बंटवारा है वो अब घर के आंगन तक आ पहुंचा है।
क्या कमाल का चित्रण है! और कमाल
अब अधेड़ उम्र का है, कुछ मोहभंग हो चुका है दुनिया से, टीचर है, लेखक है।
वो जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब तलाशना जैसे छोड़ चुका है, अब वो छोटे मोटे बौद्धिक या कहें तो बोहेमियन सुखों में तसल्ली ढूंढता है।
विडंबना देखिए, एक तरह से वो अनजाने में अपने पिता अल सैयद के ही पैटर्न को दोहरा रहा है, बस तरीके अलग हैं।
हाँ, वो भी जिंदगी की मुश्किल सच्चाइयों से भाग के बाहरी चीजों में सुकून ढूंढ रहा है।
इसी दौरान परिवार और भी दुख झेलता है, आयशा के पति और बच्चों की मौत बीमारी से।
ये याद दिलाता है कि तरक्की और आधुनिकता के बावजूद जिंदगी की अनिश्चितता, दुख, वो हमेशा रहते हैं।
और ट्रायलॉजी का अंत वो भी बहुत मार्मिक है। पहले अल सैयद अहमद की मौत, सचमुच एक युग का अंत।
फिर कुछ समय बाद आमिना भी चल बसती हैं।
और वो आखिरी दृश्य जबरदस्त है, अब्द अल मुनीम और अहमद दोनों भाई।
हाँ, अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार होते हैं और उन्हें एक ही जेल की कोठरी में डाल दिया जाता है।
दो विपरीत विचारधाराएं, एक ही परिवार के दो चिराग एक ही कैदी में, ये जैसे पूरे मिस्र के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगा देता है।
बिल्कुल, और बैकग्राउंड में दूसरे विश्व युद्ध का माहौल है जो इस अनिश्चितता को और गहरा कर देता है। महफूज, कोई आसान जवाब देकर कहानी खत्म नहीं करते।
नहीं, वो एक उलझे हुए अनसुलझे सवाल पर छोड़ देते हैं।
ये पूरी कहानी, इतनी सारी परतें हैं इसमें। महफूज की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है, वो एक परिवार की रोजमर्रा की कहानी कहते हुए कितने बड़े मुद्दों को छू लेते हैं।
जैसे आपने कहा, परंपरा और आधुनिकता का टकराव, ये तो जैसे कहानी की रीढ़ है।
हाँ, और ये सिर्फ कपड़ों या रहन सहन का टकराव नहीं है, ये सोच का है, मूल्यों का है, रिश्तों का है।
अल सैयद की पीढ़ी पुरानी दुनिया से बंधी है,
कमाल की पीढ़ी नई दुनिया की तरफ देखती है,
और तीसरी पीढ़ी वो उस नई दुनिया के अंदर ही अलग अलग दिशाओं में बटी हुई है।
फिर सत्ता और स्वतंत्रता का सवाल, घर में अल सैयद की पितृ सत्ता, बाहर अंग्रेजों का राज,
फहमी की शहादत राजनीतिक आजादी के लिए, कमाल की भटकन वैचारिक आजादी के लिए,
और महफूज दिखाते हैं कि ये लड़ाइयां जुड़ी हुई हैं। जब तक घर के अंदर घुटन है, बाहर की आजादी भी अधूरी है।
आस्था, शक और जिंदगी के मायने, कमाल के जरिए ये सवाल बार बार उठता है।
क्या पुराने विश्वास आज की दुनिया में टिक सकते हैं? अगर नहीं, तो फिर जीने का मकसद क्या है? महफूज जवाब नहीं देते, पर सवाल को बड़ी ईमानदारी से सामने रखते हैं।
एक जगह वो कहते हैं, आस्था समझने के बारे में नहीं, बल्कि जो समझा नहीं जा सकता उसे स्वीकार करने के बारे में है। शायद ये कमाल के संघर्ष को समझने में मदद करता है।
मानवीय रिश्ते भी, प्यार, शादी, त्याग, धोखा, सब कुछ है इसमें। अल सैयद और आमना का रिश्ता, जिसमें कर्तव्य ज्यादा है, प्यार कम।
कमाल का वो एक तरफा आदर्शवादी प्यार जो टूट जाता है।
बेटियों की शादियां, जिनमें सामाजिक दबाव है, व्यक्तिगत ख्वाहिशें, ये सब दिखाता है कि बदलते वक्त में रिश्ते निभाना कितना मुश्किल है।
एक विचार था ना, प्रेम दो दिलों के बीच का पुल है, लेकिन समाज दीवारें खड़ी करता है।
बिल्कुल, और महफूज इन रिश्तों को दिखाते हुए सामाजिक वर्ग और सांस्कृतिक पहचान के मुद्दे भी उठाते हैं। अल जवाद परिवार का मध्यवर्गीय संघर्ष, शद्दाद परिवार का वो पश्चिमी रंग,
महिलाओं की स्थिति भी बदलती है पर धीरे धीरे, आमिना की पूरी अधीनता से लेकर तीसरी पीढ़ी की लड़कियों की थोड़ी बड़ी चेतना तक, लेकिन सीमाएं अब भी हैं।
और इन सबके ऊपर बहता हुआ समय, पीढ़ियां आती हैं जाती हैं, घर बदलते हैं, शहर बदलता है, देश बदलता है।
अन सैयद का दबदबा खत्म होता है, बच्चे बूढ़े होते हैं, उनके बच्चे जवान। ये ट्रायलॉजी हमें जिंदगी की नश्वरता, विरासत, इन सब पर सोचने को मजबूर करती है।
अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता, भविष्य हमेशा अनिश्चित। वो कोटेशन याद है, अतीत एक सुंदर सपना है, भविष्य एक भयानक आशा।
हाँ, समय को लेकर कितना गहरा एहसास है इसमें।
और इसे कहने का महफूज का तरीका भी लाजवाब है। वो सर्वज्ञ कथावाचक का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कहानी सुनाने वाला, सब जानता है, किरदारों के मन में झांक सकता है
और बाहर के दुनिया पर भी नजर रखता है।
उनकी शैली एकदम यथार्थवादी है। काहिरा शहर, उसकी गलियां, घर, लोग, सब इतना असली लगता है।
और हो प्रतीक, जैसे वो मशराबिया वाली खिड़की औरतों की कैद का प्रतीक,
या खुद घर, सुरक्षा भी, घुटन भी, गलियां, आजादी भी, भटकाव भी।
किरदारों के अंदर की बातें बताने के लिए वो आंतरिक एकालाप, इंटरनल मोनोलॉग का भी इस्तेमाल करते हैं।
ये सब मिलकर इसे सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं बनाते, ये एक पूरे युग का, एक समाज का महाकाव्य बन जाता है।
हाँ, पढ़ते हुए आप किरदारों के साथ जुड़ जाते हैं, उनके सुख दुख आपके हो जाते हैं। कमाल की उलझने अपनी सी लगती हैं।
फहमी का जोश छू जाता है, आमिना का धीरज हैरान करता है, अल सैयद का वो विरोधाभासी किरदार सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, ये हमें ये भी सिखाती है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में धड़कता है।
हाँ, और बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आम लोगों को कैसे अंदर तक बदल देते हैं, ये महफूज ने बड़ी शिद्दत से दिखाया है।
और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि बदलाव जिंदगी का नियम है। पीढ़ियां बदलेंगी, विचार बदलेंगे, समाज बदलेगा।
और इस बदलाव के बीच अपनी पहचान, अपने मूल्यों और अपने रिश्तों को बचाए रखना, यही सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती अल जवाद परिवार ने झेली और शायद किसी न किसी रूप में हम आज भी झेल रहे हैं।
अनिवार्य समापन पंक्ति, यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।